ओम शांति। जब भी मधुबन आते हैं, भट्टी शुरू होती है, तो दिल में हरेक के अंदर संकल्प जरूर चलता है, आदरणीय सूर्य भाई जी का क्लास कब होगा, आदरणीय सूर्य भाई जी कब आएंगे। आज वो शुभ घड़ी, वो मंगल वेला हम सभी के सामने है। हम बड़े प्यार से, अच्छी जोरदार तालियों से भाई जी का बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले 45 सालों से जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ सेवा में समर्पित किया है, साकार बाबा को जिन्होंने अपनी आंखों में समाया है, ऐसे सूर्य समान आदरणीय सूर्य भाई हम सभी के सामने हैं। आपकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कला यह है कि स्वमान के अभ्यास के द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान न सिर्फ खुद के लिए लेकिन विश्व के विशाल ब्राह्मण परिवार के लिए। आपकी संकल्प शक्ति के प्रति जो निष्ठा, जो श्रद्धा और जो विश्वास है, उसका सबूत अनेक ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं। भंडारे के अंदर सेवाएं देते हुए भी लाखों की सभाओं को संबोधित करना, यह कर्मणा वाचा और मनसा का बैलेंस आपके जीवन के अंदर चरितार्थ है। ऐसे यज्ञ के बहुमूल्य रत्न आदरणीय सूर्य भाई जी हम सभी के सामने है। आज हम सब के सामने विषय स्पष्ट करेंगे, आने वाले समय को देखते हुए अपनी शक्तिशाली स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय सूर्य भाई जी।
ओम शांति। आप सभी तो शक्तिशाली हो ही, या बनाना है। भगवान के बच्चे ही यदि शक्तिशाली नहीं होंगे तो और कौन होगा। बात यही होती है कि मनुष्य चलते चलते अपनी शक्तियों को भूल जाता है। हमारी शक्तियां हमें याद रहें तो बहुत कुछ स्वतः ही ठीक होता रहेगा। आने वाला समय बहुत सुंदर भी है और बहुत खतरनाक भी। युग बदलेगा, ये धरा खाली हो जाएगी देवताओं के लिए। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। प्रकृति भी बदलेगी और ये सब समस्याएं भी बदलेंगी। डरते तो नहीं विनाश की बात सुन के? कईयों को डर तो लगता है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ मिलेगा भी तो, थोड़ा सा छोड़ने के बाद अथाह प्राप्तियां हैं। तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं थोड़े समय में। और आप सभी अपने पुरुषार्थ का एक सुंदर प्लान यहां से लेकर जाएं। भट्टी हुई आपकी, आज आखिरी दिन है या कल भी है? कल भी है। एक सुंदर प्लानिंग करेंगे पुरुषार्थ की, ताकि हम ध्यान देंगे व्यर्थ से मुक्त होते चलें। चित्त शांत होता चले। अमृत वेला प्रभु मिलन रोज होने लगे। योग सरल हो जाए। समय जो वर्तमान समय को सफल करेंगे आने वाला समय उन्हें कष्ट नहीं देगा, और जो वर्तमान समय को ऐसे वैसे बिता देंगे तो आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा लेकर आएगा। इसलिए सभी गहन चिंतन करें। मैं सबको एक बात कहता हूं, मेरे लिए भी जीवन में वो सबसे सुंदर बात रही है, आधा घंटा रोज अपने को अकेला करके अच्छा चिंतन करें। बहुत अच्छा चिंतन बाबा ने दिया है हम सभी को। देखो ऐसे सोचना, युगों की इंतजार के बाद प्रभु मिलन हुआ है, इंतजार कर रहे थे भाग्य विधाता कब भाग्य बांटने आए, वो भाग्य बांटने आ गया है, सत्य की खोज कर रहे थे, गायन कर रहे थे हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वो सब हो गया, जो मांगा था सब सामने, अब मुझे क्या करना है। भाग्य विधाता से संपूर्ण भाग्य लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जिस परिवार में हम रहते हैं, जो काम धंधा हमारा है, जो परिस्थितियां हैं, जो बच्चों की स्थिति है, उसमें रहते हुए हम अच्छे से अच्छा क्या करें, ये चिंतन करना है। अपने को याद दिलाना है हम कौन हैं, रोज अपने को याद दिलाना है बाबा हमारे साथ है। एक बहुत अच्छा अभ्यास सभी रोज करेंगे, बाबा को बुलाएं नीचे दोनों को, बाबा हमारे सामने आ गए और बाबा हमें कुछ याद दिलाते हैं, वो बाबा के मुख से सुने रोज। इसमें आप 5 मिनट लगा देना और देखना जीवन कितना सुंदर बनता है। बाप दादा सामने आ गए, वरदानी हाथ सिर पर रख दिया और याद दिलाने लगे, बच्चे तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम कलयुगी मनुष्यों के समान नहीं हो, तुम्हें देवत्व छुपा हुआ है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता नहीं करो मैं सदा तुम्हें मदद दे रहा हूँ, अपने सारे बोझ मेरे हवाले कर दो। बाबा सामने खड़ा होकर रोज कुछ याद दिलाते हैं हमें। मुरलियों को भी इसी ढंग से सुनेंगे, साकार मुरली के बाबा नीचे आकर हमें स्मृतियां दिलाते हैं। स्मृतियां, तुम कौन हो, कितने महान हो, कितने शक्तिशाली हो, तो रोज जागृति आएगी और ये जागृति परम आवश्यक है। स्वयं को जगाएं रोज आप, समझ रहे हैं ना ये भाषा। हम सो जाते हैं, कौन सी नींद में, विस्मृति की नींद में। हमें स्वयं को जगाना है स्मृति स्वरूप होकर, तो हमारी चेतना जागृत होगी और हम पाएंगे कि जिन समस्याओं में हम उलझे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बाबा सामने खड़े होकर हमें कहते हैं बच्चे ये बातें और समस्याएं बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। जागृति आते ही समस्याएं लोप होने लगेंगी। तो आने वाले समय को फेस करने के लिए, समय तो महान परिवर्तन का होगा। मुझे आज दो बातें याद आ रही थी जब ये टॉपिक मुझे दिया गया। बहनों ने शाम को ही बताया, मैंने पूछा टॉपिक तो बता दो, तो दो बातें मुझे याद आई, बहुत गहरी हैं। जिन आत्माओं के पास आठों शक्तियां होंगी उन्हें विनाश काल में कोई कष्ट नहीं होगा, सब कुछ मिलता रहेगा, जो चाहिए वही मिलेगा, लोगों को पानी पीने को नहीं होगा और ऐसी आत्माओं के भंडारे भरपूर होंगे। दूसरी बात, क्योंकि प्रकृति बहुत संहार करेगी, पांचों तत्व जो कुपित हैं, ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्रकृति को बहुत दूषित किया है, प्रकृति बहुत क्रोधित है, पांचों तत्व कुपित हैं, भयानक संहार करेंगे, सहज शब्दों में बदला लेंगे। प्रकृति बदलेगी, धरती बदलेगी, आकाश बदलेगा, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा। ध्यान से सुने बाबा का महावाक्य, जो आत्माएं बाप से कंबाइंड रहेंगे प्रकृति उनको सदा मदद करेगी। कंबाइंड स्वरूप का सिंपल मीनिंग आप समझ लें और सिंपली उसकी प्रैक्टिस करें। मैं शिव शक्ति, मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। बिल्कुल सहज रूप से इसकी प्रैक्टिस किया करें, चलते फिरते काम काज में, और कंबाइंड स्वरूप का बिल्कुल सरल अभ्यास जिसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे आंतरिक नशे में समा जाए, अंतर मन में इसको भर दो, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। मैं एक चीज बहुत सिखाता आता हूं 20 साल से, मैंने भी उसके बहुत अच्छे अनुभव किए जीवन में। अव्यक्त महावाक्यों में सुनते थे बहुत साल से, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, जब समझ में आ गया तब से बहुत अच्छे अनुभव किए, और वो ये कि बाबा सदा ही हमें मदद देने को तैयार है, हम उसे बुलाएं वो तुरंत आ जाता है। इसको नेचुरल बनाएं सभी, इसकी प्रैक्टिस करें, बाप दादा को बुलाना, और अच्छे अच्छे अनुभव होंगे विनाश काल में। चोर आ गए आपके घर में, पंडू के हाथ में है, बोल रहे हैं सब कुछ दे दो नहीं तो खत्म करते हैं, आपको प्रैक्टिस है बाबा को बुलाने की, तुरंत बाबा को कहो आ जाओ, बस इतना ही कि आ जाओ, और वो आ जाएगा और चोर भाग जाएंगे। ये सबको बहुत अनुभव होंगे। मैं एक और उदाहरण दिया करता हूं, आप बाजार में गए हैं, आवाज हो गई कि बम रख दिया आतंकवादियों ने, सब भागने लगे, आपने तुरंत बाबा को बुलाया, बाबा आ जाओ, जब तक आप सुरक्षित नहीं पहुंच जाएंगे कहीं बम फटेगा ही नहीं। ये सबको अनुभव होंगे, रोज होंगे। लेकिन अब ये आपको सोचना है कि आवाज हो गई, बम रख दिया है, आप भागने लगे, सब कुछ भूल गए, या धैर्यवत हैं कि बाबा को बुला लें, ये हमारी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, प्रकृति सब कुछ नष्ट करते हुए आ रही है, लेकिन यदि तुम कंबाइंड स्वरूप में हो तो तुम्हारे पास आते ही शांत हो जाएगी। तो हमें भविष्य की तैयारी इन दो बातों में पहले कर लेनी है, आठों शक्तियों के मालिक और कंबाइंड स्वरूप, और आठों शक्तियों के मालिक बनने के लिए ज्यादा नहीं, मैं सब्जेक्ट को जटिल नहीं बनाऊंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस नशे को बढ़ा दो। लिखने की बात नहीं, केवल इसकी फीलिंग कि बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां दे दी हैं, जो शक्तियां सर्व शक्तिवान में हैं वो मुझ में भी हैं, रोज इस फीलिंग को बढ़ाएं। इसमें 100 बार करने की भी जरूरत नहीं, 2-4-5 बार करें इस फीलिंग को, मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, माया से भी अधिक शक्तिशाली हूँ, परिस्थितियों से भी अधिक शक्तिशाली हूँ, इस संकल्प को जागृत करो, सवेरे उठते ही कर लो, तो आठों शक्तियां काम करती रहेंगी। वो हमारे अंदर होती ही हैं, जितना जितना हम योग करते हैं वो बढ़ती जाती हैं, हम उन्हें इस तरह जागृत रखें। अब मैं तीसरी चीज पर ध्यान दिलाता हूं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग भूले हैं। बहुत साल पहले बाबा ने कहा था, अब हूं मैं तुम्हारा साथी और विनाश काल में हो जाऊंगा साक्षी। कई लोग आजकल भी कहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बाबा हमारी सुनता ही नहीं, हमने रोज बाबा को पत्र लिखा है, बाबा के कमरे में जाकर उसे सब बताया है, पर सुनता नहीं। मुझे कहते हैं, तुम कह दो हमारी ओर से, तुम्हारी सुनेगा। मुझे याद रहती है वो बात, मेरी तो सुनेगा, मुझे पता है, पर मैं सोचता हूं जब भगवान रोज रोज कह रहा था तब वो भी तो सोचता था, मैं इन्हें रोज समझाता हूं ये मेरी सुनते नहीं है, तब भी वो मुझे कहता था इन्हें कहो मेरी सुने, कहता होगा नहीं। तो बाबा ने कहा, ये नियम नहीं है कि परीक्षा के समय मदद की जाए। बाबा ने बहुत मदद की है, बहुत पढ़ाया है, सब रहस्य खोल कर रख दिए मुरलियों में, कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी अज्ञात नहीं, सब जानकारी हो गई है, किसने क्या किया उसकी परीक्षाएं तो होंगी ही, और जिसको जितना बड़ा एग्जाम पास करना हो, जिसको जितना बड़ा पद चाहता हो, बड़ा एग्जाम तो देना ही पड़ता है ना, आईएएस का कंपटीशन हो रहा हो और छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएं, तो लाखों स्टूडेंट आईएएस पास न कर लें, लेकिन उन्हें चुनने हैं 500 ही, टफ पेपर, टफ कंपटीशन, टफ इंटरव्यू, जिसको राजा ही पानी है उसको अच्छा एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ही बाबा किसी को राजा ही दे दे, कल दूसरा उससे छीन ले तो भगवान का रचा हुआ स्वर्ग भी बेकार हो जाएगा। कौन कौन आप में से राजा ही पाना चाहेंगे? इतने राजा, चलो योग कर लो और देखो भ्रकुटी सिंहासन पर बैठना स्वराज अधिकारी बनकर। परीक्षाएं तो होंगी, अब परीक्षाएं देनी है या नहीं, या ये सोचते हैं पढ़ाई तो बहुत अच्छी पर परीक्षा ना हो, सोचेगा कोई ऐसा? भाई इस कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, प्रोफेसर सब बहुत योग्य हैं, पावरफुल हैं, पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षाएं तो होंगी और परीक्षा ज्यादा नहीं, दो, मोह की और निश्चय की। निश्चय की गति बहुत सूक्ष्म है। यूं तो हर बाबा का बच्चा कहता है हमें पूरा निश्चय है, पर निश्चय बहुत सूक्ष्म है। बहुत कम आत्माएं, बहुत कम, उसमें भी कम निश्चय बुद्धि होती हैं। आपका क्लास हुई होगी यहाँ निश्चय बुद्धि पर, साक्षी साथी और साक्षात्कार मूर्त, तीन बातें याद रखेंगे। बाबा की मुरलियों में सबने सुन लिया होगा कि विनाश काल में बाबा अपने बच्चों को बहुत बहलाएगा, ये फील ही नहीं होने देगा कि विनाश हो गया। लेकिन किनको ये सोचना है, बाबा सबको साक्षात्कार कराएंगे। कुछ आत्माएं साक्षात्कार करने वाली होंगी और कुछ होंगे कराने वाली। जो साक्षी दृष्टा है लंबे काल से, जो साक्षात बाप समान बन जाएंगी, ब्रह्मा बाबा समान, वो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी जरूर हैं जो बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे पवित्र हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ स्वमान का लंबा काल अभ्यास किया है, उनके द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होते रहेंगे। एक ही उदाहरण देता हूं, मान लो किसी ने अभ्यास कर लिया, मैं इष्ट देवी हूं, अष्टभुजाधारी इष्ट देवी, और मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, और मुझसे आठों शक्तियों की किरणें निकलती हैं, ये बाबा ने सिखाया है। कई बार होली पर ये बाबा के महावाक्य चले, जैसे पिचकारी से रंग निकलता है ना, फैल जाता है, आत्मा से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें निकलेंगी। जिन्होंने ये अभ्यास किया होगा, विनाश काल में वो इस स्वरूप में स्थित होंगे, मैं अष्टभुजाधारी हूँ, मेरे मस्तक से आठों शक्तियां फैल रही हैं, जो भी सामने आएगा यही दिखाई देगा, और जय जयकार होने लगेगी। तो बाबा इस कार्य में भी सबको बिजी कर देगा। आवश्यकता इस बात की है, सभी ध्यान दें, जिनको आने वाले समय में अचल अडोल बनना है, छोटी छोटी बातों से बाहर निकल जाएं, सब चिंतन करेंगे। अनेक ब्राह्मण आत्माएं छोटी छोटी बातों में उलझी हैं, उन बातों में जिनकी वैल्यू ही नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरह जान लें और अपने को ट्रेनिंग दें। सबसे ज्यादा कीमती है मेरी श्रेष्ठ स्थिति, बातों की कीमत कुछ भी नहीं। जो आत्माएं इस तरह की बातों को न समझ के अपना सारा दिन छोटी छोटी बातों में बिता देती हैं, वो इस महान स्थिति को कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है, और जो बाबा हमारा साथी है उसको सच्चे अर्थों में साथी बना लेना है, बनाना है उसको साथी। अब मैं आऊं एक इम्पोर्टेंट बात पर, जिससे आपको डरना नहीं है, हमें मोहजीत बनना है, बनना है, बनना है। ये नहीं कि माताओं में मोह है, सब में मोह है। लोग माताओं को ऐसे ही बदनाम रखते हैं कि माताओं में बड़ा मोह है। मैंने कई भाइयों में बहुत मोह देखा। जिस वस्तु या व्यक्ति को हमने मेरा कहा उसमें मोह हो गया, और वो चीज अगर हमसे छुड़ाई जाए तो कष्ट होगा, संकल्प चलेंगे। योगियों के बारे में एक प्रसिद्ध बात है, आजकल प्रसिद्ध नहीं है, आजकल वो लहर खत्म हो गई है। योगियों को बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह संस्कृत का शब्द है। अगर बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी करते हैं, ये हो ही नहीं सकता उनमें हमारी बुद्धि न अटकी हो, हमें पता नहीं चलेगा पर बुद्धि उनमें अटकी रहेगी। इसलिए योग युक्त आत्माओं के लिए बाबा ने एक सुंदर लाइन बोल दी है, योगी माना मेरा कुछ भी नहीं। आपके घर में जो कुछ भी है, सबके घरों में सब कुछ रहता ही है, उसको आपको निकाल तो नहीं देना है, लेकिन उससे बुद्धि को अवश्य निकालना है कि जो चीजें हमारे पास हैं, ध्यान दें आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मेंटली हमको अपने को तैयार करना है, मानसिक रूप से अपने को तैयार करना है भविष्य के लिए। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, जो कुछ हमारे पास है वो यूज करने के लिए है, वो सुख पाने के लिए है, उसका सुख लेते रहें, लेकिन जब वो जाए हमसे तो जा नहीं दो, दूसरा आ जाएगा। सभी बहुत अच्छी तरह अपने मन को तैयार करें, एक चीज जाएगी दूसरी उसकी अच्छी आएगी। ठीक बात है या नहीं? अनुभव होगा सबका, हर एक के जीवन में एक चीज जाती है दूसरी आ जाती है, और अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है एक चीज जाएगी उससे दो गुनी अच्छी चीज आ जाएगी, दस गुनी अच्छी चीज आ जाएगी। तैयार करें अपने को, इसलिए जो कुछ जाता है उसको विदाई देने की आदत बनाएं। बात थोड़ी भारी है लेकिन प्रैक्टिस करें। पहले स्थूल चीजों की मैं बात कर रहा हूं, धन संपदा भी, जिनके पास बहुत है, बाबा तो लेगा नहीं, बाबा ने कह दिया है आखिर में मैं किसी का नहीं लूंगा, मुझे थोड़े बहुत ज्यादा भर के उन्हें देना है, मेरा संपर्क अभी कुछ ऐसे लोगों से हुआ अभी 15 दिन के अंदर जो बहुत साहूकार हैं। कितने साहूकार? किसी की 50,000 करोड़ की संपदा, किसी की 80,000 करोड़ की संपदा, किसी की 1,00,000 करोड़ की संपदा। ज्ञान में आ रहे हैं, ज्ञान में आ रहे हैं। मैं सोच रहा था अब से 5 साल के बाद ये कहेंगे हमारा ये सारा धन तुम ले लो, और बाबा क्या कहेगा? बाबा क्या कहेगा? हमें जरूरत नहीं है, पैसा रखकर क्या करेंगे? बाबा का पैसा तो सब सेवाओं के लिए है, बाबा ने सावधान किया हुआ है हम सबको, ये धन संपदा स्वयं के लिए नहीं यूज करना, सेवाओं के लिए करना है, यही हमारी साधनाएं होंगी। तो मैं सोच रहा था ये बहुत सारे साहूकार जिनके पास अरबों की संपदा है, ये सब आएंगे कि हमारा सब ले लो, बाबा स्वीकार नहीं करेगा। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? मेरे पास अभी नजदीक में कोई एक ऐसी आत्मा आई जो 3 ही लोग हैं, लड़की, माँ बाप, बहुत संपदा है, तीनों ही खुश नहीं है जीवन में, तीनों ही खुश नहीं है। प्राय बहुत पैसे वालों का ये हाल होता है, तीनों के मुंह 3 दिशाओं में रहते हैं, आपस में कभी मिलते भी नहीं हैं, एक दूसरे से हाल चाल भी नहीं पूछा जाता। जब ज्ञान लेंगे तो कहेंगे सब ले लो हमारा, और इधर बाबा कहेगा जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, मन से बाबा के ऊपर समर्पित हो जाओ, सब कुछ तेरा, बाबा लेगा नहीं आपका, आपका पैसा आपके पास रहेगा, आप डरना नहीं कि कोई ले लेंगे आपका सारा, लेकिन सब कुछ तेरा। ये इतनी सूक्ष्म बात है, आपने सच्चे मन से कर दिया, बाबा हमारा ये सब कुछ तुम्हारा है, बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया और उसका रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, उससे मैंपन खत्म हो जाएगा। और अगर विनाश वो होता है तो आपको लगेगा हमने तो बाबा को अर्पित कर दिया था, हमारा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, आनंदित रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, जिनके धन संपदा में बहुत ममता है, जब वो सब जाएगा क्या हो जाएगा, रात को सो नहीं पाएंगे, सारा जीवन तो कमाया था, पाप भी बहुत किया इस पैसे के पीछे, न जाने कैसे कैसे धंधे किए, ये तो एक सेकंड में चला गया हमें छोड़कर। ये तैयारी सबको करनी है, मानसिक तैयारी है, ये सब कुछ जाएगा। क्लियर है ना, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, सब कुछ जाएगा या थोड़ा सतयुग में भी ले चलेंगे। माताओं का क्या इरादा है, थोड़ा एक बैग भर के रख लेंगे सतयुग में उसके साथ जाएंगे, सब कुछ जाएगा। इसलिए मैंने कहा किसी को कंजूस भी नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे रहते हैं, बहुत धन है लेकिन बच्चों को सुख नहीं देते, बैंक में रखा है इमरजेंसी में काम आएगा, बच्चों को सुख नहीं देते, ये नहीं करना है। जो भी धन संपदा आपके पास है उसका सुख भी लो, उसको सेवाओं में भी लगाओ, तो सफल भी होगा और वृद्धि को भी प्राप्त होगा। सभी को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है आत्मिक दृष्टि की, क्योंकि इस युग परिवर्तन के काल में अगर हमें ये नेचुरल स्मृति रहेगी कि सब आत्माएं हैं, तो किसी की भी मृत्यु पर कष्ट नहीं होगा। बाबा ने बताया एक मुरली में स्पष्ट, लोग चिल्लाएंगे ये मरा ये मरा, इतने मर गए, और आप अंदर क्या सोचेंगे, मरे नहीं, सब मुक्त हो गए, घर चले गए। तो ये आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्मृति, इसका बहुत अच्छा अभ्यास सभी को करते रहना है। आप सभी ने यहाँ आकर अवश्य प्लान बनाया होगा कि हम अपने अमृत वेले को और मुरली के समय को बहुत सफल करें। कौन कौन रोज मुरली सुन लेते हैं, अच्छा सब हाथ उठा रहे हैं, थोड़े तो हैं जो नहीं सुनते, तुम भी सुन लेती हो, अच्छा सबसे बड़ी स्टूडेंट है ये हमारी क्लास की। अमृत वेला प्रभु मिलन का सुख, साथ में मैं आपका ध्यान दिलाता हूं एक दूसरी धारणा पर भी, जिस पर लोग कम बोलते होंगे, अपनी प्योरिटी को स्ट्रांग करो। सबसे बड़ी पावर बनकर उभरेगी विनाश काल में पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की शक्ति। जो बहुत पवित्र बन जाएंगे वो ऐसे ही चमकेंगे जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है, वो अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे और ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। प्रकृति को हमसे क्या चाहिए, पवित्र वाइब्रेशंस सभी अच्छी तरह जान लें। इसलिए जिसकी पवित्रता में जो भी कमी हो वो उसे अब ठीक करे। लास्ट चांस है सबके लिए। अभी बाबा मदद कर रहा है, अभी भी बाबा ने कहा तुम एक कदम बढ़ो मैं हजार कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ये खेल इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए आज सभी सभा में सच्चे मन से संकल्प कर लें, एक बार पवित्रता के पथ पर कदम रखा है वापिस नहीं देखेंगे। स्वीकार है? एक बार भगवान को वचन दिया है वापिस नहीं लेंगे। हमारे ये संकल्प हमें दृढ़ बनाते हैं। इसके लिए योग शक्ति की जरूरत भी होती है। बिना अच्छे योग के कोई भी इस माया को जीत नहीं सकता। चार घंटे हमारी अच्छी स्थिति अवश्य रहनी चाहिए। अमृत वेले बहुत अच्छे वाइब्रेशंस बाबा से ले लेने चाहिए, तब पवित्रता में बल आएगा। नहीं तो बहुत लोग हार मान रहे हैं क्योंकि चारों ओर का वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है। बाबा के शब्दों में आप सबने ये शब्द साकार मुरलियों से सुने हैं, संसार में काम की आग लगी हुई है। आजकल बहुत तेज हो गई है ये आग। जो युवा पीढ़ी है वो इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। हम सभी को, युवा पीढ़ी को भी अपने वाइब्रेशंस देकर मदद करनी है, क्योंकि भारत की कल्चर पर भी वेस्टर्न कल्चर का बहुत बुरा इफेक्ट आ गया है। जो कुछ अंग्रेजों के देशों में होता है वो भारत में भी होने लगा है। उससे बहुत कष्ट पा रहे हैं हमारे युवक, बहुत कष्ट पा रहे हैं। मेरे पास तो कॉन्टैक्ट होता है युवकों का, वो मुझे बताते हैं कि गलतियां तो कर ली लेकिन अब उसका कष्ट असहनीय हो रहा है। इसलिए पवित्र आत्माओं को चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर नई पीढ़ी को मदद करनी है। उनका दोष नहीं है, संसार का वायुमंडल ही बहुत दूषित हो चुका है, हमारी कल्चर ही पॉल्यूटेड हो चुकी है। मदद करनी है सभी को। और आपको ये बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान हो, हमारी जितनी अच्छी प्योरिटी होगी उसके वाइब्रेशंस हमारे भारत देश को पुनः महान बनाएंगे। ये भारत देश पुनः विश्व गुरु बन जाएगा विनाश से पहले ही। संसार में आध्यात्मिकता की लहर यहीं से निकलेगी और हमारे ये तीनों स्थान जो बाबा ने कहा हुआ है आबू क्या बन जाएगा, महान तीर्थ, ये होने जा रहा है। यहाँ आने वालों की भीड़ लग जाएगी, हर ट्रेन आबू रोड ही रुकेगी आकर, हर प्लेन आबू रोड में ही उतरेगा। भारत एक महान देश के रूप में प्रख्यात हो जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं है। इसलिए आप सभी भाई बहने जो बहुत बुद्धिमान हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, अपने योग के बल को भी बढ़ाएं और पवित्रता के बल को भी बढ़ाएं। जिनके पास ये दोनों बल रहते हैं समस्याएं उनके परिवारों में ठहरती नहीं है। मैं दो छोटी बातें और बता देता हूं अब लास्ट में। सभी के सुखद जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि छोटी बातों को बड़ा न करें। बुद्धिमान वही है जो बातों को जल्दी जल्दी समाप्त करे। बातों को बढ़ाएंगे तो बातों का इफेक्ट ब्रेन पर आता रहेगा। हल्का कर दो सब कुछ। और जो मैंने बीच में आपको एक बात कही, सबसे मूल्यवान हमारी स्थिति है, बातें नहीं। दूसरी बात, बातों को पकड़ कर न रखें। बहुतों में बातों को पकड़ कर रखने का संस्कार होता है, बातों को छोड़ते ही नहीं, इसलिए उलझते रहते हैं। तो मेरे साथ सभी चिंतन करें, ये समय बहुत सुंदर चल रहा है, बाबा से सब कुछ लेने का समय, उसकी सारी शक्तियां स्वयं में समाने का समय। हम छोटी बातों में स्वयं को उलझाएं नहीं। लक्ष्य बहुत महान है, कर्तव्य बहुत महान है, आने वाले समय में महान कार्य करने होंगे सबको, पता है ना। ये बाबा बहुत साल से कहते थे, तुम्हारे वाइब्रेशंस की संसार को बहुत बहुत जरूरत है। अब वो समय आ गया है, लोग आपके पास आएंगे, हमें दृष्टि दे दो, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारी टेंशन खत्म हो जाए। ये भी कहेंगे माताओं से, अपने घर का पानी पिला दो हमें, अपने घर में बैठ जाने दो हमें, योग्य बनना है। सोचो आपके घर से कोई प्यासा ऐसे ही चला जाए और वहीं जाके मर जाए पास ही, कैसा लगेगा। प्यासी आत्माएं, तड़फती आत्माएं, बेचैन आत्माएं आपके द्वार पर आएंगी और वो रोती रोती वापिस चली जाएं, कैसा लगेगा। इसलिए अपने को तैयार करें आने वाले महान कार्यों के लिए। विनाश की बात छोड़ दें, अभी हमें महान बनना है, महान कार्य करने हैं, साक्षात्कार मूर्त बनना है और बाबा के संसार के काम आना है। आप सभी एक सुंदर प्लान के साथ यहाँ से वापस घर जाएं, ताकि जैसे आए थे जाने के बाद उससे चार गुना पुरुषार्थ हो। ठीक है, पसंद है। और ये सब मनुष्य के हाथ में है, और जो करना चाहे उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति।